नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता की और केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले सुझावों के लिए प्रमुख अर्थशास्त्रियों तथा क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों से बातचीत की। ये बैठक देश की आर्थिक स्थिति और भविष्य की प्राथमिकताओं के बारे में विचार और आकलन साझा करने का माध्यम है। बैठक में उन क्षेत्रों के बारे में प्रमुखता से विचार विमर्श हुआ जिनमें अर्थव्यवस्था को मजबूती और विकास को गति देने तथा उभरती चुनौतियों के समाधान के लिए सुधार जरूरी हैं। नीति आयोग द्वारा आयोजित इस संवाद से आर्थिक आयोजना के अगले चरण की तैयारी के लिए सरकार को बहुमूल्य सुझाव मिल सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत सुधार एक्सप्रेस पर सवार हो गया है और वैश्विक आकर्षण केंद्र के रूप में उभर रहा है। सोशल मीडिया पर साझा लेख में प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा विश्व भारत की ओर आशा और विश्वास से देख रहा है और अगली पीढ़ी के सुधारों से गतिमान प्रगति की सराहना कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की जनसांख्यिकी, युवा पीढ़ी और देशवासियों का अदम्य संकल्प इस सुधार एक्सप्रेस का मूल इंजन है। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2025 भारत के लिए सुधारों के वर्ष के रूप में याद किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने वर्तमान वर्ष 2025 को जीवन सुगमता और कार्य सुगमता सुनिश्चित करने के लिए लागू शासन सुधारों को समर्पित किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि सेवाएं उपलब्ध कराने का दायित्व संभाल रहे लोगों के लिए कार्य सुगमता होनी चाहिए। उन्होंने रोजगार मेला और केंद्रीकृत जन शिकायत निपटान और निगरानी प्रणाली सहित विभिन्न विभागों की मुख्य पहल और उपलब्धियों का उल्लेख किया। गृहमंत्री अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर पश्चिम बंगाल में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के कारण राज्य को बर्बाद करने का आरोप लगाया। कोलकाता में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घुसपैठ की समस्या का समाधान करने में विफल रही हैं। श्री शाह ने कहा कि राज्य में अगला चुनाव घुसपैठ रोकने और उनको निकालने के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। आरजी कर और कस्बा विधि महाविद्यालय के दुष्कर्म की घटनाओं पर गृहमंत्री ने कहा कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा अगले वर्ष होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी।
19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38% वोट मिले और 77 सीटें मिली। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिले थे वो पार्टी 5 साल के ही अंतराल में 77 सीट प्राप्त करी।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संसद ने वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित भारत जी रामजी विधेयक पारित किया है। इसके माध्यम से मनरेगा योजना की कमियों को दूर किया जाएगा। भोपाल में उन्होंने कहा कि इस मिशन में बेरोजगारी भत्ता के लिए स्पष्ट प्रावधान शामिल है और अधिनियम में आवश्यक वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रधानमंत्री की गतिशक्ति पहल से जोड़ा गया है।
विकसित भारत जी राम जी योजना को विकास से जोड़ने का काम भी हुआ। ग्राम पंचायत गांव के समन्वित विकास का प्लान तैयार करेगी और ग्राम पंचायत और ग्राम सभा जो काम तय करेगी, जो गांव के विकास के लिए आवश्यक है, वही काम इस योजना के अंतर्गत किए जा सकेंगे। ये संकल्प प्रधानमंत्री जी का, देश का ही संकल्प है ये, और उसके लिए जरूरी विकसित गांव। विकसित गांव के बिना विकसित भारत बन नहीं सकता।
जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत सेवाओं की कुशल उपलब्धता तथा सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए वर्चुअल माध्यम से आज जल सेवा आकलन का शुभारंभ किया। जल सेवा आकलन जल जीवन मिशन पोर्टल पर ग्राम पंचायत के नेतृत्व में पेयजल सेवा के लिए डिजिटल आकलन सुविधा है। हर घर जल ग्राम पंचायतों के जरिए ये कार्य अगले वर्ष 26 जनवरी तक पूरा होने की आशा है। शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की युवा लेखक मार्गदर्शन योजना पीएम युवा के तीसरे चरण के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिता के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसके अंतर्गत 22 भारतीय भाषा और अंग्रेजी में 43 पुस्तकों के प्रस्तावों का चयन किया गया है। चयनित पुस्तकें प्रस्तावों को 6 महीने में पुस्तकों के रूप में विकसित किया जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच 5वां अंतिम T20 महिला क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। श्रृंखला में भारत 4-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।